विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन की समुद्री डकैती पर। समुद्री डकैती और अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए समुद्री डाकुओं के प्रयोग में ब्रिटेन का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन हालिया दिनों में जब ब्रिटेन की नौसेना ने जिब्राल्टर स्ट्रेट में ईरान के एक ऑयल टैंकर को गैर कानूनी तौर पर रोका, तो ये चर्चा फिर से होने लगी। गत 4 जुलाई को ईरान के एक सुपर ऑयल टैंकर ब्रिटेन की सेना ने इस बहाने से रोक लिया कि वो टैंकर सीरिया जा रहा था और सीरिया पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा रखा है, किंतु बाद में कहा गया कि ईरान के ऑयल टैंकर को अमेरिका के कहने पर रोका गया है। तो सबसे पहले मरियम मेहरदादी के जबान से एक रिपोर्ट।
ब्रिटेन की नौसेना ने 4 जुलाई को गैर कानूनी तरीके से ईरानी ऑयल टैंकर ग्रीस 1 को जबल तारिक स्ट्रेट में रोक लिया। लंदन का दावा है कि उसने सीरिया के खिलाफ यूरोपीय संघ की सीमा के उल्लंघन को रोकने के लिए ये तेल टैंकर रोका है, जबकि स्पेन का दावा है कि लंदन ने अमेरिका के कहने पर ऐसा किया है। स्पेन के विदेश मंत्रालय के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने इस बारे में कहा है कि ईरान से चलने वाले तेल टैंकर को अमेरिका के आह्वान पर रोका गया है। इसी प्रकार स्पेन के विदेश मंत्रालय के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि अमेरिका का दावा है कि ये तेल टैंकर सीरिया के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहा था और ब्रिटेन की नौसेना की ये कार्रवाई समुद्री डकैती है, तथा वॉशिंगटन और तेल अवीव ने ब्रितानी नौसेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। प्रतीत यह हो रहा है कि ब्रिटेन अधिक से अधिक अमरीकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो यूरोपीय संघ से निकलने वाला है। रोचक बात यह है कि सुरक्षा परिषद ने सीरिया पर कच्चे तेल का प्रतिबंध नहीं लगाया है और ब्रिटेन की ओर से सीरिया जाने वाले तेल टैंकर को रोक लेना पूरी तरह गैरकानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी ब्रिटेन के इस कदम को समुद्री डकैती के समान बताया है और कहा है कि ब्रिटेन को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने या यूरोपीय संघ के एकपक्षीय प्रतिबंधों को दूसरे देशों पर थोप दे।
ब्रिटेन की ओर से ईरान के ऑयल टैंकर को रोके जाने पर ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास इराकची ने बताया कि यह सुपर टैंकर था जिसमें 2 करोड़ बैरल तेल था और ब्रिटेन के दावे के विपरीत ये ऑयल टैंकर सीरिया नहीं जा रहा था, क्योंकि सीरिया के जिस बंदरगाह का नाम लिया जा रहा है वहाँ इतने बड़े टैंकर की क्षमता ही नहीं है।
در مورد نفکش هم من این توضیح رو بدم، این نفکش حامل نفت ایران بوده و یک سوپر تانکر هست 2 میلیون بشکه ظرفیتش بوده، به همین دلیل که ظرفیت بالایی داشته امکان عبورش از کانال سوئز وجود نداشته و لذا از تنگه جبل طارق به مقصد خودش عازم شده، برخلاف آنچه که دولت انگلیس مدعی شده هدف این و مقصد این نفکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین سوپر تانکری رو نداره.
ایران کے رکشا منتری امیر حاتمی نے کہا کہ برٹن کا یہ قدم انتراشٹری نیموں کے خلاف اور پرمانو سمجھوتے کا الگھن اور سمندری ڈکیتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ سمندری ڈاکوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور اس ڈکیتی کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔
یک اقدام شبیہ راہزنی دریائی است، ما با راہزنی دریائی قاطعانہ تا به امروز مبارزه کردیم، نیروهای دریائی جمہوری اسلامی ایران زحمات زیادی رو در مقابله با دزدان دریایی که به دنبال ناامن کردن آبراه‌ها و امنیت کشتیرانی بودند انجام دادند. یقینا این نوع راهزنی‌ها هم تحمل نخواهد شد.
ब्रिटेन ईरानी टैंकर को रोके जाने का विभिन्न बहाना पेश कर रहा है, इसीलिए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन को साफ साफ कह देना चाहिए कि वो अमरीकी आदेशों का पालन कर रहा है, अमरीका का सेवक है।
توجیه بسیار بچگانه مضحک انگلیسی‌ها اینجا مطرح کردن، خب رسما اعلام بکنن ما نوکر آمریکاییم، از طرف آمریکا اقدام میکنیم.
राष्ट्रपति रूहानी ने इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि एक अतिग्रहणकारी सरकार ने ऐसी जगह पर ईरान के ऑयल टैंकर को रोका जहां उसकी उपस्थिति ही गैर कानूनी है। स्पेन के सारे लोग उसके विरोधी हैं। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि समुद्र में असुरक्षा को अंग्रेजों ने शुरू किया है और इसके जो परिणाम सामने आएंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी ब्रिटेन पर होगी। ब्रिटेन ने बहुत बड़ी गलती की है।
انگلیسی ها آغاز ناامنی در دریا رو شروع کردن و تمام اون چه به دنباله این خواهد آمد مسئول مستقیمش انگلیسه.
ایرانی ادھیکاری نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ برٹن نے بہت بڑی غلطی کی ہے، سوئم برٹن میں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ کئی بار برٹش سانسد رہے جارج گیلوے کے وچار دھیان سے سنیں، وہ بھی اسے سمندری ڈکیتی بتا رہے ہیں۔
Absolutely, piracy on the high seas, piracy in Spanish territorial waters, it's a major mistake by the British government, which is the only government in history that has set about leaving the European Union and making enemies of the rest of the world simultaneously. It is an act of madness, it's an act of brigandage, piracy, it's a crime. And I think Britain will be made to pay for it. The Iranians will almost certainly retaliate in kind. Then we'll be into an international crisis point, a flash point, which could lead to a shooting war. It's almost inexplicable, even by the standards of this government sitting behind me, that they should do such a thing.
उन्होंने कहा कि ईरान के सरकारी ऑयल टैंकर को रोका जाना गैरकानूनी है क्योंकि ये प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आता और ट्रंप और जॉन बोल्टन के कहने पर ब्रितानी नाविकों की जान को खतरे में डाला जाना अस्वीकार्य है। जॉर्ज गैलवे की बातें सुने।
The idea that a state-owned oil tanker headed for Syria was some kind of illegal contraband is utterly ridiculous. The European Union does not have oil sanctions against the Republic of Iran. Neither does it have oil sanctions against Syria. So if Donald Trump and John Bolton invented a casus belli, that's a matter for them. But to use our brave Royal Marines, putting them in the line of fire to do Donald Trump and John Bolton's dirty work is a crime, it's also a blunder.
अमेरिका और ब्रिटेन के वर्तमान संबंध के बारे में पाकिस्तानी टीकाकार राशिद नकवी कहते हैं,
برطانیہ اب بھی ہے، برطانیہ بظاہر اب ایک جزیرہ رہ گیا ہے۔ برطانیہ کسی زمانے میں جب ان کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بھی ان کے ذہن میں وہی پرانی سامراجیت اور امپیریلزم کی جو ہے نا وہ خواب دیکھتے ہیں، جبکہ اب برطانیہ کوئی برطانیہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا پہ، لیکن وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے، اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور بعض دفعہ وہ امریکہ کا سہارا لیتا ہے۔ مثلاً عراق کی جنگ بھی آپ لے لیں، حتیٰ سوریہ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو برطانیہ بالکل امریکہ کے ساتھ، بلکہ کسی زمانے میں تو ٹونی بلیئر کے بارے میں بڑے منفی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ وہ جارج ڈبلیو بش کے لیے جو ہے ایک دم ہلاتا کتا ہے، کہ اس طرح جس طرح وہ اشارہ کرتا ہے یہ اس کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ امریکہ برطانیہ کے تعلقات ہیں، یعنی پچھلے دو عشروں میں صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے اس لحاظ سے کہ یورپ بالآخر، برطانیہ ایک بڑی قدیم اس کی ایک ثقافت ہے، اس کے اپنے کچھ ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، لیکن امریکہ کے قریب آنے سے وہ ویلیوز بھی جو سو کارڈ اپنے آپ کو وہ مہذب اور تہذیب یافتہ اور سیولائزڈ کہتے تھے، وہ بھی اب کاؤ بوائے کی اس روش پہ جو ہیں وہ چل نکلے ہیں۔ اس مسئلے میں بھی پہلی بات تو یہ کہ قانونی طور پہ کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ جبل الطارق ایک متنازع علاقہ ہے، جس علاقے میں یہ آئل ٹینکر تھا یہ تو جبل الطارق میں بھی نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل واٹرز میں۔ اس لحاظ سے خود اسپین کی طرف سے بھی یہ احتجاج سامنے آیا ہے کہ برطانیہ کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس ایریے میں جو ہے وہ ایران کے اس آئل ٹینکر کو جو ہے وہ اس پہ قابض ہو یا اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ پھر دوسرا جو برطانیہ کی طرف سے جو بہانہ آیا ہے نا، وہ بہانہ بھی بڑا عجیب ہے۔
ब्रिटेन की इस कार्रवाई के परिणाम के बारे में पाकिस्तानी टीकाकार आसिम रजा का कहना है,
ये सिर्फ अमरीका नहीं, इसके पीछे इसराइल है और अमरीका बखुद मतलब बजात खुद अगर हम बात करें तो वो कुछ नहीं है, उसके पीछे जो अजाइम है वो इसराइल के नजर आते हैं। और जो पाबंदियों का जिक्र किया गया ईयू के साथ कि उसकी वजह से इसको जबल तारिक के करीब से गुजरते हुए ओपन वाटर्स में स्पेन के करीब, हालांकि ये ओपन वाटर था वहाँ पे रोका नहीं जा सकता था, गो के ईरान की तरफ से एक वाजे बयान आया है और उन्होंने भी उनके ऑयल टैंकर्स को रोकने और उनको बंद करने की बात की है कि अगर नहीं छोड़ा गया। लेकिन ये सरासर एक वो फासिस्ट निज़ाम नज़र आ रहा है पूरी दुनिया के ऊपर कि अमेरिका या इसराइल जो चाहेगा वो मनमानी करवा लेगा। गो के सीरिया के हवाले से, शाम के हवाले से बोला गया कि ये तेल उधर जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करते हैं ईयू की पाबंदियों की तो ईयू की पाबंदियों की हैसियत क्या है और बरतानिया खुद जो इस ब्रेग्जिट की इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है और अमरीकी जो धमकियां हैं यूरोपीय यूनियन के लिए वो सबके सामने नज़र आ रही हैं, तो ये कोई ऐसी जस्टिफाइड या कोई हकाइक पर मबनी चीज़ नहीं है जिसको बेस बनाकर, जिसको वजह बनाकर उस ग्रेस वन ऑयल टैंकर को रोका जाए। और ईरान की तरफ से इसके ऊपर एहतजाज किया, बल्कि जो जवाबी कार्रवाई का जो हक है वो बनता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो सारा दबाव वही नज़र आता है कि जो इसराइल या अमेरिका की खुशनुदी के लिए पूरी दुनिया में एक दबाव के तहत खेल खेला जाता है। बरतानिया की इस वक्त पोजीशन जो है वो एक आलाकार से बढ़कर कुछ नहीं रह गई है, क्योंकि बरतानिया अमेरिका के साथ मिलकर, चाहे फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बरतानिया हो, ये उसी हैसियत में रह गए हैं कि जो उसके आलाकार के तौर पर मनोवन जो वो कहता है उसको तस्लीम करते हैं। अगर आप देखें तो डिमॉन्स्ट्री इंटरनेशनली इवन अमेरिका के अपने अंदर हुई थी बुश और डॉक्स के ऊपर टोनी ब्लेयर की तस्वीर लगा के कि इसकी हैसियत उससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसके बाद तो हमें नज़र ही आता है कि बरतानिया की वो कदामत पसंदी कहाँ गई, वो असूल परस्ती कहाँ गई, अब क्योंकि उसका किरदार माइनस होता जा रहा है, अमेरिका एक हावी एक ताकत के तौर पर नजर आता है, तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए बरतानिया मनोन हर बार इख्तियार करेगा जो उसको अमेरिका या इसराइल की तरफ से कहा जाएगा। मैं इसको अमेरिका नहीं समझता, मैं इसको इसराइल का एक साजिशी हरबा समझता हूँ जो कि तमाम दबाव ईरान पर डालने के बाद जितनी धमकियाँ दी जाती रहीं, जितना जो एक्शंस लिए जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि अपना बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन, अपनी नेवल फ्रिगेट्स जो है, गनशिप फ्रिगेट्स वो ला के खड़ी कर दी, उसके बाद B-52 बम्बार्स तैयार है, क्या कुछ दबाव डालने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ईरान की एक जिसे कहते हैं इस्तकामत और एक मुस्तकिल मिजाजी हमें नज़र आई, जिसके बाद उसके पास और कोई हरबा नहीं है इस तरह के घटिया हरबे इस्तेमाल करने का कि कहीं उसकी शिप रोक लेंगे, कहीं कोई और कार्रवाई करके दिखाएंगे, और यही होगा कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ये दिखाएंगे कि हम जब चाहे जो चाहे मर्जी कर सकते हैं।
ईरान बार बार कह रहा है कि उसके ऑयल टैंकर को रोकना गैर कानूनी कदम है और इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान फिलहाल संयम और सहनशीलता का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के इस कदम का जवाब देना ईरान के लिए बेहद आसान है और इसके लिए उसे कहीं जाना भी नहीं होगा, किंतु ईरान हर हाल में शांति चाहता है और शांति के लिए जहां तक संभव हो प्रयास करता है।